السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخری عشرے کا آخری ہفتہ داخل ہو چکا ہے، اس میں بہت تیز دوڑ لگانے کی ضرورت ہے، آپ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے. شروع میں اکثر لوگ بڑے جوش میں ہوتے ہیں، بڑے سپیڈ سے عبادت کرتے ہیں، شوق سے کرتے ہیں، بیچ میں جا کے پھر تھوڑا سب کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے. اور اب جب کہ آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے، تو اب دوبارہ ضرورت ہے کہ ہم اسی طرح جیسے ہم نے شروع کیا تھا اس مہینے کو، اسی طرح ہم دوبارہ شوق کے ساتھ عبادت کریں. اب تھکنے کا وقت نہیں ہے. اکثر ہوتا ہے نا کہ جیسے انسان شروع کرتا ہے تو وہ اس وقت انرجی ہوتی ہے، اینڈ تک آتے ہوئے پھر انرجی بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے اور پھر شوق بھی مدھم پڑ جاتا ہے. تو اگر کسی نے پہلے 20 دن بہت شوق کے اور بہت محنت کے ساتھ گزارے، لیکن آخری عشرے میں اگر سست پڑ گئے، تو یہ صحیح نہیں ہے. ہاں، جو پہلے 20 دن اگر سست رہا ہے مگر آخری عشرے میں اس نے دوڑ لگا دی، سمجھ لیں وہ جیت جائے گا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار جو ہے نا ان کے خاتمے پہ ہے، کہ کس طرح سے آپ اینڈ کرتے ہیں، یعنی سٹارٹ کیسے کرتے ہیں اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا، مگر اینڈ کرنے سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا کہ آخر کے جو 10 دن تھے ان میں اتنی زیادہ محنت کرتے تھے جتنی پچھلے 20 دنوں میں نہیں کی ہوتی تھی. لہٰذا ہمیں بھی کمر کس لینی چاہیے اور اپنی راتوں کو زندہ کرنا ہے. دن نہیں، یہ راتوں کو زندہ کرنے والے عشرہ ہے. اور میں نے آپ کو حدیث بھی سنائی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام نے جو بد دعا کی تھی کہ جو رمضان میں اپنی بخشش نہ کروا سکا وہ ہلاک ہو گیا. اور سوچ لیں کہ 23 دن گزر چکے ہیں اور آخری ہفتہ رہ گیا، تو اس میں کون پھر پیچھے رہ سکتا ہے. تو ہم نے انشاءاللہ اس آخری ہفتے کو سب سے اچھا گزارنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی 20 راتوں کا اعتکاف نہیں کرتے تھے، آخری عشرے کا کرتے تھے. اور اسی میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر ہے، امت مسلمہ کی عمریں پچھلی امتوں سے کم ہیں، اور اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت یعنی تشویش تھی کہ پچھلی امتیں تو اتنی عمریں پا کے اتنی نیکیاں کر گئیں، تو اب میری امت کی تو عمر ہی اتنی چھوٹی ہے، تو یہ کیا کریں گے پھر. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ ہمیں دیا ہے لیلۃ القدر کا. تو ایک بندے نے اگر پوری زندگی عبادت میں گزاری ہو، جو کہ کتنی ہوتی ہے، آج کل کی زندگی بہت بھی کسی کو مل جائے 80-85 سال ہوگی، تو اتنی بھی دن اور رات عبادت میں گزاری، پیدا ہونے کے دن سے لے کر 85 سال اس نے 85 ایئرز اگر اس نے عبادت میں گزارے، ایک پل بھی نہیں نہ سویا نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، تب بھی اس سے بہتر ہے اس ایک رات کی عبادت. اور ہم تو اگر اتنی عمر پا بھی لیں 85 ایئرس، 83+ ایئرس، تو ہم اس میں ہر وقت تو عبادت نہیں کر سکتے. فضیل بن عیاض ایک دفعہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک بوڑھے آدمی سے ملاقات ہوئی. اس سے پوچھا تم کتنے سال کے ہو؟ وہ بولا 70 سال کا. تو حیران ہو کے فرمایا کہ تم 70 سال سے اللہ کی طرف سفر کر رہے ہو. وہ رونے لگا، اس کو یعنی ایک طرح سے ریلائز ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہوں مسلسل. تو فضیل بن عیاض نے اس کو تسلی دی कि कोई बात नहीं, जो हो चुका तुम्हारी जिंदगी में वो तो हो गया, अब जो बाकी रह गया है उसको अच्छा कर लो तो अल्लाह ताला पिछले गुनाह भी माफ कर देगा। लिहाजा अब जरूरत इस बात की है कि हम पिछले गुनाहों के ऊपर माफी मांगे और आगे की जिंदगी में बेहतरी करने की कोशिश करें। यही वो दिन है जिस दिन में हम तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे, यही वो दिन है जिसमें हम थोड़ी सी कुर्बानी देंगे। कुर्बानी किस चीज़ की? अपनी नींद की, आराम की, खाने पीने की तो देते हैं रोज़ा रख के, तो नींद आराम ये चीज़ें हैं जिनकी कुर्बानी थोड़ी देनी पड़ेगी। देखिए अल्लाह ताला ने फरमाया ना, फ़फ़िरू इलल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ दौड़ लगाओ, अल्लाह ताला की तरफ भागो। तो इस अशरे में तेज़ दौड़ना है, और आप देखें कि दौड़ने में मुशक्कत लगती है, मेहनत लगती है, तो इसलिए इस चीज के लिए तैयार होना चाहिए। और इन रातों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसे हमने पहले भी बात की कि इस्तिग़फ़ार करने का हमें बताया गया और उसके लिए दुआ भी हमें बता दी गई, तो ये दुआ बार बार इन रातों में करते रहना है और सोच समझ के करनी है, और ये भी सोचना है कि आइंदा के लिए भी इन गुनाहों को मैंने छोड़ना है। तो जब भी गुनाह करने का ख्याल जहन में आए, खुद से यही पूछें कि क्या कोई मुझे देख रहा है? अगर तो अंदर से जवाब आता है कि कोई भी नहीं देख रहा, तो ये तो कुफर है, और अगर अंदर से आवाज़ आती हाँ कोई देखने वाला है, तो फिर हमें उस देखने वाले से हया करनी। इस तरह से हमें अपने गुनाहों से दूरी इख्तियार करनी है। तो ना सिर्फ ये कि तौबा इस्तग़फ़ार करें, हम अब गुनाहों को छोड़ने का भी इरादा करें कि अल्लाह ताला हमें देखने वाला है। असलाफ में बहुत से ऐसे थे जो गुनाह कर सकते थे, ताकत भी थी, मौके भी होते थे, मगर क्या चीज़ उनको रोक देती थी कि मुझे अपने रब के सामने खड़े होना है। तो अगर इस तरह की हम चीज़ें सोचें तो हम भी गुनाहों से बच सकते हैं और आइंदा की ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ये सोच रखना कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, और ये सोच रखना कि मुझे अल्लाह ताला के आगे खड़े होकर जवाब देना है, ये हमारी जिंदगी के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट कर सकती हैं। और कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला से जब मुलाकात हो तो इस हाल में हो कि हम गुनाहों से पाक साफ हों, या हमारे गुनाह बहुत ही कम हों। ठीक है, तो इसके लिए ये आखिरी अशरा और उसमें ख़ास तौर पे आखिरी एक तहाई रात जो है ये बेस्ट है, ये जिसमें हम अपनी दुआओं को जमा करें, अपनी दुआएं मांगें। और हमें बड़ी ये गलतफहमी शायद रहती है कि हमारे सबके पास बहुत टाइम है और कर लेंगे और कर लेंगे और कर लेंगे, और हम अपनी तौबा को भी टालते जाते हैं, हालांकि हम नहीं जानते कि हमें दोबारा ऐसा मौका मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। असलाफ में से एक अपने बिस्तरे मर्ग पर जब थे तो उनको ये उस वक्त ख्याल था कि अब मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, तो लोगों ने आके पूछा कि हमें कुछ नसीहत कीजिए, तो फरमाया मैं तुमको खबरदार करता हूँ। किस चीज़ से? कि मैं कर लूँगा ये काम। तो लोगों ने कहा हमें समझ नहीं आई, फरमाया ये मत कहो कि मैं एक दिन ये कर लूंगा, एक दिन नेक हो जाऊंगा, एक दिन तौबा कर लूंगा, एक दिन मैं पलट आऊंगा, एक दिन मेरे अंदर चेंज आ जाएगी, मैं चेंज हो जाऊंगा। नहीं, एक दिन नहीं, आज करो। तो ये धोखा है कि एक दिन कर लेंगे। तो जिसने इरादा कर लिया इन दिनों में कि मैंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है और मैंने पलटना है और मैंने अपनी लाइफ को चेंज करना है और मैंने ये गुनाह छोड़ने हैं, वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है। और जो ये सोचें कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, और रमजान आया नहीं आया एक ही बात है उनके लिए। तो उन्होंने फिर रमजान से कुछ भी नहीं पाया। तो तौबा इस्तिगफार को तो यानी अपने साथ ऐसे कर लें कि बस मैंने सारा दिन रात इन दिनों में अल्लाहुम्मा इन्ना काफून तुहिब्बुल अफ़ाफ़ा अफ़ाना, अल्लाहुम्मा इन्ना काफून तुहिब्बुल अफ़ाफ़ा अफ़ाना, यही करते रहना, एक रट लगा दें इसकी। आपको पता है ये सिर्फ ना सिर्फ गुनाह धुलते हैं बल्कि इसके तो बहुत फायदे हैं इस्तगफार करने के। इंसान की जो दुआएं हैं वो कबूल होती हैं। आपने वो वाक्या सुना होगा, इमाम अहमद बिन हम्बल जब एक शहर में गए थे तो वहाँ पे मस्जिद में नमाज पढ़ी, रात को मस्जिद में ठहरने का इरादा रखते थे मगर मस्जिद वालों ने इजाज़त नहीं दी और उनको निकाल दिया। अब वो बाहर निकल कर खड़े में कि किधर जाऊँ, इतने में एक करीब नान भाई की दुकान थी, वो कहता है आप आ जाए मेरे पास आके रात गुजार लें। तो वो उसके साथ चले जाते हैं। देखते क्या है कि वो नान भाई जो है वो अपना काम कर रहा है और काम के साथ साथ वो इस्तग़फार करता जा रहा है, इस्तग़फार करता जा रहा है, अस्तग़फिरुल्लाह 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 कहता जा रहा है। तो वो कहते हैं उससे कि ये तुम इस्तग़फार करते जा रहे हो तो इसका कोई फ़ायदा भी देखा है तुमने? उसने कहा मैं क्या बताऊँ इस कितना फ़ायदा है इसका, पहले एक मैं गरीब आदमी होता था, जब से इस्तग़फार करने लगा हूँ माल इतना हो गया है कि संभाला नहीं जाता, और जो दुआ भी मैं करता हूँ वो कबूल होती है सिवाय एक दुआ के, वो अभी तक नहीं कबूल हुई। पूछा वो क्या है, कहने लगा कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि इमाम अहमद बिन हम्बल से मुलाकात हो जाए, बस ये ही एक ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हुई। तो इमाम साहब कहने लगे वो मैं ही हूँ इमाम अहमद बिन हम्बल, और फरमाते हैं कि मुझे ऐसे लग रहा था कि अल्लाह ताला मुझे खींच के तुम्हारे पास मुलाकात के लिए लेकर आया है, तो रिस्क भी मिलेगा, गम भी दूर होंगे, नेकी के रास्ते भी खुल जाएंगे, अल्लाह ताला की रजा भी मिलेगी और आखरत में भी सजाओं से बच जाएंगे, और क्या चाहिए। तो इस्तगफार तो बहुत बड़ी चीज है, जो भी इंसान की परेशानी हो ना इस्तगफार के साथ, कहा जाता है कि हर गम से इंसान को निजात मिल जाती है, ये इनाम है इस चीज के ऊपर। और अल्लाह ताला वहां से रिस्क देता है जहां से इंसान का गुमान भी नहीं होता। आज की जो हमारे जिक्र है ना वो भी इसी से रिलेटेड है कि आप कपड़े पहने आपके गुनाह झड़ेंगे, आप खाना खाएं आपके गुनाह झड़ेंगे। कैसे? अगर आप खाना खा के ये कलेमात कह देंगे इससे आपके गुनाह मिट जाते हैं। और वो क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमनी हाज़ा अत्तआम व रज़क़नी मिन गैरि हौलि मिन्नी वला कुव्वति। और जब कपड़े पहनने लगे तो फिर ये दुआ करें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा सौब व रज़क़नी मिन गैरि हौलि मिन्नी वला कुव्वति। तो अगर आपको दुआ नहीं याद है तो आप ऐसा करें, जहां पर आप कपड़े चेंज करते हैं, आपकी क्लोसेट है कुछ है वहां पे इसको लिख के लगा लें, या जहाँ आप खाना खाते हैं वहां पे ये दुआ लिख के लगा लें। देखिए आप खाना खा रहे हैं, आपका अपना काम है, कपड़े चेंज करते हैं इंसान का एक जरूरत है, अब अपनी जरूरतों के वक्त भी उसकी ये कलिमात कहने से गुनाहों की बख्शिश हो जाती है। और हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला ना सिर्फ ये कि यहाँ पर हमारे अब गुनाह माफ कर दे, बल्कि हमें अल्लाह ताला आगे भी तौफीक देना कि मरने से पहले भी हमारे गुनाहों की बख्शिश हो जाए, हमें वो तौफीक मिल जाए तौबा करने की। तो हमारे जो असलाफ होते थे ना वो ऐसी ही दुआएं किया करते थे, तीन दुआएं इकट्ठी करते थे वो। एक दुआ क्या कि या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनी का, ये आपको पता है मसनून दुआ है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ये मांगा करते थे कि दिलों को उलटने फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पे जमा देना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि दिल इस दीन के ऊपर रहे, क्योंकि दिल का क्या पता आज कुछ है तो कल कुछ और है। और फिर दूसरा अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी तौबतन नसूहा कबल अल मौत, ए अल्लाह मुझे सच्ची तौबा करने की तौफीक देना मौत से पहले, और तीसरी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुस्नल खातिमा, यार अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ अच्छे खात्मे का। तो ये दुआएं आप सजदे में भी जाके मांगे। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो एंड अच्छा हो गया तो सब अच्छा है, तो उसने खात्मा में भी किया है कि लिस लाइफ का एंड हमारा अच्छा हो जाए। सीधा तौबतन नसूहा क्या है कि जो सच्ची तौबा हो, वो मुझे मौत से पहले उसकी तौफीक दे देना। मौत के बाद तो बहुत लोग तौबा तौबा करेंगे लेकिन उसका फायदा नहीं होगा, मौत से पहले मुझे तौफीक मिल जाए तौबा की। तो ये तीनों दुआएं इकट्ठी करके और आप मांग सकते हैं, एक पूरी जिंदगी की दुआ, एक मौत से पहले के लिए दुआ, और एक मौत का वक्त हुस्ने खात्मा का वक्त हो जाए तो यानी खात्मा बिल खैर हो मेरा। तो ये बहुत प्यारी दुआएं, इनको शामिल कर लें अपनी दुआओं की लिस्ट में, और इंशाल्लाह उतारा फिर आगे हम चलते हैं अपनी सीरीज की तरफ। देखते हैं कि आज हम क्या किन लोगों से मुलाकात करते हैं।
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. عاريهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.
चलते हैं अपनी सीरीज की तरफ। आज इसका एपिसोड नंबर 4 है। खस्ता हाल इस मकान से किसी बुढ़िया के खांसने की आवाज़ आ रही थी। मैंने झांक के देखा तो एक उम्र रसीदा औरत बिस्तर पर पड़ी हुई यूं लग रही थी जैसे एक ढांचा हो। उसके करीब एक दूसरी औरत दवा लिए हुए खड़ी थी जो कोई 50-60 के पेरे में होगी। अम्मा दवा ले लें। अम्मा ने बमुश्किल खांसी पर काबू पाते हुए कहा, आ गई दवा। नासिर को कहाँ से पैसे मिले? पता नहीं मगर कहीं से तो ले ही आए हैं। हाय मेरा बच्चा, बुढ़िया कराहते हुए बोली, पता नहीं कैसे लाया होगा। औरत ने बुढ़िया को सहारा देकर बिठाया और दवा अपने हाथ से उसके मुंह में डाली। फिर वो खामोशी से कमरे से निकल गई। बुढ़िया मुश्किल से सांस खींचते हुए लेट गई। दूसरे कमरे में इस औरत का शौहर बैठा था। बानो, अम्मा को दवा दे दी? जी, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। बानो, तुमने जैसे मेरी माँ का ख्याल किया इसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया के। आप कैसी बातें करते हैं, आखिर मेरी वो कुछ लगती हैं? आदमी ने लंबी सांस खींची और बोला, वो तो तुम्हारा बड़ा पन है, वरना अम्मा आज तक तुम्हारे साथ जो भी करती रही हैं मैं सब देखता रहा हूं। और अब तो वो ऐसे हाल में जिसमें औलाद भी अपने वालदैन को नहीं पूछती, और तुम्हारा तो उनसे बहू का रिश्ता है, तुम कैसे कर लेती हो ये सब? शायद मैं भी तुम्हारी जगह होता तो ना कर पाता। वो आहिस्तगी से बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। और वैसे भी क्या इस दुनिया में हर काम अदले का बदला ही होता है? असल नेकी तो वो है जो बेलौस होकर की जाए। जो उन्होंने किया वो उनका कर्म है, जो मैं कर रही हूं वो मेरा अमल है। वो शख्स बोला, हाँ मगर आसान तो नहीं। पिछले 3 साल से तुम इसी तरह अम्मा की खिदमत कर रही हो। तुम्हें वो बातें तो याद आती होंगी जो वो तुम्हें कहा करती थी, वो ताने, वो तुर्श बातें। औरत ने सर झुका लिया और बोली, आखिर मैं भी इंसान ही हूं, याद तो आती हैं, खास तौर पे जब मेरा कोई कसूर भी नहीं होता था और उसके बावजूद मुझे कोसा जाता था। जब जरा जरा सी बात पे मुझे खूब सुनाई जाती थी, जाहिर है 3 साल पहले की तो सब बातें मेरे जहन में नक्श हैं। जब हर आए गए के सामने मेरे फोहड़पन के तस्करे किए जाते थे। मगर नासिर, फिर सबर और क्या होता है? अगर इसके बदले मुझे जन्नत मिल जाए तो क्या ये सबर महंगा है? हरगिज नहीं। अगर इसके बदले मेरे गुनाह झड़ जाएं तो क्या ये सहना मुश्किल है? हरगिज नहीं। बात बात पर जब ताने दिए जाते थे तो वो ताने सुनने आसान हो गए जब मैंने ये सोचा कि अल्लाह ताला मजलूम के साथ होता है। इस ख्याल ने मुझे ऐसा मसहूर कर दिया कि मेरा अल्लाह जो मेरे साथ है। फिर अम्मा की बातें ज्यादा असर नहीं करती थी। नासिर बोला, हाँ लेकिन आजकल ऐसा कौन सोचता है? आजकल तो औरतें शौहरों के बल के कान भरती हैं, उनको उकसाती हैं। इतना जर्फ किस में है? वो बोली, देखे नासिर, जर्फ इंसान में होता नहीं है, किसी में भी नहीं होता। जर्फ को पैदा करना पड़ता है। जब आखिरत की मंजिलें सामने नजर आने लगें, जब मरने के बाद की जिंदगी याद रहे, जब हिसाब किताब के मरहले हकीकत नजर आए, तभी जर्फ आता है और तभी सब्र करना भी आसान होता है, तभी दरगुजर किया जाता है, तभी बेलौस हो जाता है इंसान। वो अभी बात कर रही थी कि दरवाजे पर घंटी की आवाज आई। दोनों चौंक गए। नासिर दरवाजा खोलने के लिए तेजी से उठा। घंटी बजाने वाले ने तो गोया घंटी पर हाथ ही रख दिया था। बानो को बाहर से किसी के सख्त लहजे में बोलने की आवाजें आ रही थी। आखिर तुम कब कर्जा लौटाओगे? तुम जैसे लोगों का यही होता है, पैसे ले लेते हो मगर फिर देने का नाम नहीं लेती। कोई तुर्श लहजे में बोले चला जा रहा था, अब अगले महीने की 1 तारीख को आऊंगा, पैसे तैयार होने चाहिए। नासिर ने दरवाजा बंद किया और सर झुकाए हुए कमरे में वापस आ गया। बानो ने सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखा। वो कहने लगा, फिर वही कर्ज चुकाओ कर्ज चुकाओ, मैं कहाँ से लाऊं? हलाल से गुजारा करना बहुत मुश्किल है। सोचता हूं हमारे फैक्ट्री के मालिक के बेटे की शादी पर पिछले 3 हफ्ते से पूरी गली में चरागा किया जा रहा है। उसका बिल लाखों में होगा। रोजाना एक फंक्शन होता है जिस पर नित नए ग्रुप आते हैं। जो गाना बजाना करते हैं। हर दिन 20-25 डिशेस पर मबनी खाना मेहमानों को दिया जाता है। डेकोरेशंस के तो क्या ही कहने, वो तो करोड़ों में है। सड़क से लेके घर तक एक एक कोना सजाया हुआ। उसका योमिया खर्चा ही कोई 10-20 लाख से कम तो ना होगा। एक वो है और एक इधर मैं हूं, जिसके पास 50,000 रुपया भी नहीं कि जो तनख्वाह से बचा के कर्ज लौटा सकूं। अम्मा की बीमारी ना होती तो मैं ये कर्ज भी कभी ना लेता। मैं अब कहाँ से अदा करूंगा? आगे ये बच्चियां भी जवान हो गई हैं, इनकी शादियां, इनके काम सब कैसे होगा? लोग तो जायज नाजायज की परवाह किए बगैर कमा रहे हैं और ऐश कर रहे हैं, और एक मुझे पहली तारीख का इंतजार करना पड़ता है अम्मा की दवा लाने के लिए भी। मानो से रहा ना गया, वो बोली, लेकिन आप हलाल का लुकमा अपनी औलाद के मुंह में डालते हैं, आप हलाल घर लाते हैं, इसलिए रात को सुकून से सोते हैं। अपनी मेहनत से जो भी कमाते हैं वो आपकी इबादत है। हाँ, कहती तो तुम ठीक हो, मगर सोचता हूं इन बच्चियों की शादियां भी तो करनी है, वो भी अल्लाह करा देगा। अभी तो आप इस बात पर खुश हो जाएं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी 2 बेटियां हो या 3 हो, फिर उनकी अच्छी परवरिश करे, उनकी तरबियत करे, उनकी शादी करे, तो वो जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। और रिस्के हलाल कमाना तो वैसे ही इबादत है, लिहाजा आप तो दोनों तरह से अजर कमा रहे हैं। नासिर मुस्कुरा दिया। तुम कैसी अजीम औरत हो, शौहर परेशान हो तो उसको तसल्लियां देती हो, कोई बुराई करे तो उसके साथ भलाई करती हो, मेरी इतनी कम तनख्वाह में बगैर शिकायत किए गुजारा कर रही हो, फरमाइशें भी नहीं कर रही। तुमसे अल्लाह राजी हो जाए, बानो मुस्कुरा के बोली, बस आपने दुआ दे दी, यही मेरे लिए काफी है। वैसे भी मैं आपसे फरमाइशें क्यों करने लगी, क्या मैं नहीं देखती कि आप कितनी मेहनत करते हैं? सुबह से जाते हैं, रात को आते हैं, सारा दिन फैक्ट्री में एक टांग पे खड़े रहते हैं। नासिर बोला, हाँ, लेकिन आजकल की औरतें ऐसा कहाँ सोचती हैं, वो तो कहती हैं हमें लाकर दो, जहां से भी लाओ। सायरा कमरे में दौड़ती हुई आई, अम्मी दादी ने उल्टी कर दी है। बानो झट से भागी, अल्लाह रहम करे। मैं हैरान थी इसका हौसला देख के, वाकई इस दौर में तो कोई भला करने वाले को भी भलाई का जवाब दे दे तो बहुत बड़ी बात है। और कहाँ इसकी सास, जिसने सारी जिंदगी इसके लिए कांटे ही बोए, और ये इसके लिए अच्छा कर रही है। वैसे भी ये कौन सा खून का रिश्ता है, ये नेकी तो सिर्फ वो ही कर सकता है जो खालिस अल्लाह के लिए करने वाला। मैंने कई घरों की कहानियां देखी हैं, लोग हमसायों के साथ अच्छा करते हैं, दोस्तों के साथ खुश रहते हैं, हर आने जाने वाले के साथ खुश अखलाकी से पेश आते हैं, मगर मैंने ये नहीं देखा कि वो रिश्ता जो खून का ना हो, जिसमें खुशगवार यादें ना हो, उसके साथ कोई भलाई करे। बानो ने बड़े सब्र से उल्टी साफ की, मगर बी अम्मा की जुबान से ना तो कोई दुआ निकली और ना ही कोई शुक्रिया। तारीफ तो दूर की बात थी, जबकि ये औरत इसी हौसले से काम कर रही थी जैसे कि वो अपने किसी प्यारे के लिए करे। वाकई जन्नत के रास्ते के राही दुनिया में ही नजर आने लगते हैं। वो अभी सफाई सुथराई से फारिग ही हुई थी कि बेटी ने आके कहा, अम्मी पड़ोस से गुलशन आंटी आई हैं। वो बोली, अच्छा बेटा, जाओ जाके चाय बनाओ, और सुनो, जो कल साथ वालों के घर से मिठाई आई थी वो भी रख देना। लेकिन अम्मी, वो मिठाई तो आपको पसंद है और आपने इतने शौक से अपने लिए उठा के रखी थी, कौन सा हमारे घर रोज रोज मिठाई आती है। कोई बात नहीं बेटा, मेहमान की मेहमान नवाजी करना ये भी नेकी है, हमारे नबी ने इसकी ताकीद की है। वो बेटी को हिदायत देकर कमरे से निकल गई। आने वाली मेहमान से खुश दिली से मिली। गुलशन बोली, क्या हाल है तुम्हारी सास का? बस वैसे ही है भाई, मेरी सास ने तो मुझे नाजायज कुछ बातें सुनाई, तो मैंने तो कोई 1 महीना हो गया मुंह ही नहीं लगाया। तुम तो पता नहीं कैसे कर लेती हो, और वो भी 3 साल हो चुके हैं। वो बिस्तर पर पड़ी हुई है और तुम खिदमत में लगी हुई हो। तुम थक नहीं जाती? बानू मुस्कुराती रही और कुछ ना बोली। ऊपर से तुम्हारी वो नंद जो इंक्वायरी करने आ जाती है, ये भाभी आपने अम्मा के कपड़े बदले या नहीं, भाभी आपने अम्मा को दवा दी या नहीं। अगर उसको इतनी फिक्र है तो अपनी अम्मा को अपने साथ ले क्यों नहीं जाती, खुद क्यों नहीं संभालती? बानो मुस्कुरा के बोली, गुलशन फिर मेरा अजर कहाँ जाएगा? हाय तुम भी तो थक जाती होगी। हाँ थक तो जाती हूँ, रात को जब बिस्तर पर लेटती हूँ तो हड्डियाँ टूट रही होती हैं। आखिर अब मैं भी कोई जवान नहीं रही, मगर यही तो अजर कमाने के दिन है गुलशन। परायों के साथ तो चंद घंटे के लिए सभी अच्छा हंस बोल लेते हैं, हमारा असल इम्तिहान तो हमारे अपने घर वालों के साथ होता है। गुलशन झट से बोली, मगर घर वाले भी तो ऐसे होने चाहिए कि जो शुक्रिया तो करें, हौसला तो बढ़ा दें। यहाँ तो ये हाल है कि नेकी भी करो और कोई तारीफ नहीं। रस्सी जल गई बल ना गया। मानो लंबी सांस खींच के बोली, गुलशन क्या ये काफी नहीं है कि हमारा रब हमारी तारीफ कर दे? लोगों से तारीफ और शुक्रिया लेकर करना भी क्या है? मिल गया तब हम नेकी करें, तो वो कैसी नेकी हुई? ना मिले तो ये काम छोड़ दें, तो ये कैसे नेकी हुई? तब तो हमने शुक्रिया के लिए नेकी की ना। असल नेकी तो वो है जिसमें किसी से ना शुक्रिया चाहिए ना तारीफ। तुमने पढ़ा नहीं सूरत दहर में कि नेक लोग दूसरों को जब खाना भी खिलाते हैं तो कहते हैं हमें तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए और कोई शुक्रिया नहीं चाहिए। ए बहन तुम तो पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई, पता नहीं तुम में कैसे ये हौसला है। गुलशन ये मत कहो, हमें अपने अंदर हौसला पैदा करना होगा अगर हमने जन्नत में जाने वाले काम करने। और किसने तुमसे कह दिया कि जन्नत के रास्ते के काम आसान है? जन्नत यूं ही हंसी खेल के साथ ही मिल जाती है। ये तो हमारे नबी ने बता दिया था कि ये मुश्किलात का रास्ता है, ख्वाहिशात को दबाने का रास्ता है, नफ्स पे काबू पाने का रास्ता है। ये है ही हौसले और सब्र का रास्ता। अब तुम भी जब घर जाओ तो वापस अपनी सास से बोलचाल शुरू कर देना, वरना 3 दिन से ज्यादा कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान से कता ताल्लुक नहीं कर सकता। दोनों में से एक भी मर गया तो जहन्नमी होगा। हाँ तो वो मुझे बुला लेना, जरूरी है कि मैं ही उनको बुलाऊं? अरे पगली, अजर तुम्हें मिल रहा है और तुम ये अजर उनको देना चाहती हो? वैसे तो वो तुम्हें पसंद नहीं है, मगर अजर के मामले में तुम सारा उनकी झोली में डाल देना चाहती हो। गुलशन को ये बात समझ में आ गई। वो बोली, बानो तुमने वाकई जो सीखा है इसके ऊपर अमल करके तुम अंदर बाहर से खूबसूरत हो गई। तुमने जो कुरान की तालीम ली है वाकई नजर आता है, वरना बाज लोग तो इस तालीम को भी बदनाम करते हैं। बानो बोली, बस मैं कोई परफेक्ट नहीं हूं गुलशन, मैं भी पता नहीं कितनी दफा गिरती हूं फिर संभलती हूं। बस कुरान की बातें नबी की बातें जब याद आ जाती हैं तो आगे बढ़ने का हौसला मिल जाता है, वरना शायद कब से हिम्मत हार चुकी होती। फिर ये बातें कर ही रही थी कि उसकी बेटी चाय ले आई। वो बोले जा रही थी, जानती हो अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसको दीन की समझ देता है। मुझे ये परेशानियां हल्की महसूस होने लगी जब से मैंने दीन की तालीम ली, और सोचती हूँ कि मेरे रब ने मेरे ऊपर कितनी करम नवाजी की है कि मुझे ये समझ दे दी। गुलशन हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, वाकई तुम जिस हौसले से सब कुछ संभाल रही हो ये तो मुमकिन ही नहीं था अगर तुम्हारे पास ये इल्म ना होता। और मैं सोच रही थी कि इस औरत में कितनी शुक्रगुजारी है, वरना शिकायत करने पे आती तो इस घर में कितनी चीज़ें हैं जिन पर ये शिकायत कर सकती थी, ना शुक्रिया कर सकती थी, मगर ये तो शुक्र से बनी हुई है। फिर मैंने सोचा कैसे दीन की तालीम एक औरत का जेवर बन जाती है। इसने तो अपने हर काम को इबादत बना लिया, हर रिश्ते को सुकून में बदल दिया, हर सिचुएशन को सवाब कमाने का जरिया बना दिया। वाकई ऐसे लोगों का ठिकाना जन्नत ही होना चाहिए। यहाँ तक आज का एपिसोड मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला इससे भी हमें सबक लेने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ ताक रात के सेशन में मुलाकात होती है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।